एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, आलस की कला।
हाँ, the art of laziness।
बिल्कुल, और ये सोच हमारी उस धारणा को मतलब सीधी चुनौती देती है कि भाई सफल होने के लिए तो लगातार मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा बिजी रहना पड़ता है। क्या वाकई?
हाँ, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखिए, आजकल जिस तरह का हसल कल्चर है ना, मतलब हमेशा भागते रहो और करते रहो और करते रहो।
हाँ हाँ,
और नतीजा क्या होता है? अक्सर थकान, बर्नआउट।
सही बात है।
तो आज हम लाइब्रेरी माइंडसेट नाम की एक दिलचस्प इकाई के विचारों को देखेंगे।
हाँ।
जिन्होंने इसी आलस की कला पर फोकस किया है।
सवाल यही है कि क्या कम करके, ज्यादा सोच समझकर हम बेहतर नतीजे पा सकते हैं। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है ना कि यहाँ आलस का मतलब वो काहिली वाला आलस नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है रणनीतिक आलस,
स्ट्रेटेजिक।
हाँ, रणनीतिक।
ये जानना कि क्या करना है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना है।
बिल्कुल।
तो चलिए इस पे और बात करते हैं। पहले ये बताइए, ये लाइब्रेरी माइंडसेट है कौन? नाम थोड़ा अलग सा है।
हाँ है। तो देखिए, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक कंटेंट क्रिएशन ग्रुप है। यूट्यूब पर काफी जाने जाते हैं ये लोग।
अच्छा।
और इनकी खासियत है मुश्किल आइडियाज को एकदम आसान बनाना। ये जैसे मनोविज्ञान है, उत्पादकता, दर्शन, बिजनेस, इन सब पर सैकड़ों किताबों का निचोड़ निकालकर हमें देते हैं।
अच्छा, तो मतलब ये ज्ञान को सिंथेसाइज करने में, उसे सरल बनाने में माहिर है।
हाँ बिल्कुल। ये खुद से कोई मौलिक रिसर्च नहीं करते, बल्कि दूसरों के काम, जैसे मान लीजिए विल्फ्रेडो पारेटो हैं या सिरिल पार्किंसन, रिचर्ड कोच, इनके सिद्धांतों को लेते हैं, जोड़ते हैं और एक नया प्रैक्टिकल नजरिया देते हैं। और मजे की बात यह है कि इनका काम करने का तरीका ही वो आलस की कला का एक तरह से सबूत है।
कैसे?
भाई, ये किसी भी किताब से वो 20% आइडियाज निकालते हैं जो आपको 80% वैल्यू देते हैं।
अरे वाह।
तो ये एक तरह के भरोसेमंद फिल्टर की तरह काम करते हैं। इतनी सारी जानकारी आजकल, उसमें से काम की चीज क्या है ये ढूंढने में मदद करते हैं।
ये तो बहुत बढ़िया है। तो फिर इस आलस की कला का मूल विचार क्या है? ये कैसे हमारी वो ज्यादा मेहनत इज इक्वल टू ज्यादा सफलता वाली सोच को चुनौती देता है?
देखिए, इसका मूल तर्क ये है कि सच्ची प्रभावशालिता, मतलब इफेक्टिवनेस, वो सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं आती। वो आती है सही चीजों पर ध्यान देने से और बाकी जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको बेरहमी से हटाने से।
अच्छा।
ये जो हसल कल्चर है ना, उसकी आलोचना करता है, क्योंकि वो हमें व्यस्त तो रखता है पर जरूरी नहीं कि प्रोडक्टिव भी बनाए, है ना?
सही का, बस भागते रहते हैं।
हाँ, तो ये हमें सिखाता है कि कैसे कम करके ज्यादा महत्वपूर्ण नतीजे पाएं, ज्यादा संतुष्ट रहें और शायद थोड़ा कम तनाव में जिएं।
मतलब सिर्फ काम निपटाना गोल नहीं है, ये सोचना है कि कौन सा काम वाकई मायने रखता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये विचारधारा हमें किन मुख्य सिद्धांतों की तरफ ले जाती है? क्या खास बातें हैं इसमें?
इसमें कुछ बहुत ही मतलब शक्तिशाली सिद्धांत हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर है 80-20 नियम।
हाँ, परेटो सिद्धांत।
हाँ वही, परेटो सिद्धांत। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे लगभग 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं।
सोचिए जरा।
हाँ, मतलब आपकी लगभग सारी सफलता या खुशी वो सिर्फ मुट्ठी भर चीजों से आ रही है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी हैं?
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बाकी 80% मेहनत शायद सिर्फ व्यस्तता है, नतीजा नहीं।
एग्जैक्टली।
पर उस 20% को पहचानना, वही तो असली चुनौती है ना। हम अक्सर उन कामों में फंस जाते हैं जो आसान लगते हैं या जिनमें शायद मजा आता है, भले ही वो उतने जरूरी ना हो।
बिल्कुल। और यहीं पे वो रणनीतिक आलस काम आता है।
अच्छा।
ये कहता है कि पहला कदम है उस महत्वपूर्ण 20% की पहचान करना, चाहे वो आपके काम में हो, रिश्तों में हो या आपकी खुशी देने वाली एक्टिविटीज में। और फिर हिम्मत करके बाकी 80% को या तो छोड़ देना या कम से कम उसे कम प्राथमिकता देना।
ये सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल होगा।
हाँ मुश्किल है, क्योंकि हमें हमेशा और करने की आदत है ना। कुछ और कर लें, ये भी निपटा लें।
सही बात।
यहाँ एक बहुत यादगार विचार है जो किताब में आता है। सबसे उत्पादक काम वो है जिसे आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है।
वाओ, मतलब पहले पूछो क्या ये जरूरी भी है।
हाँ।
क्या इसे हटाया जा सकता है? सही कहा, ना कहना सीखना पड़ेगा इसके लिए तो।
बिल्कुल।
अच्छा, तो मान लीजिए हमने जरूरी काम पहचान लिया, पर अक्सर होता यह है कि कोई काम हो वो फैलता जाता है, जितना समय दो उतना ले लेता है।
हाँ हाँ बिल्कुल होता है।
इसके बारे में भी कुछ है क्या इसमें?
हाँ, यहीं पर आता है पार्किंसन्स लॉ।
पार्किंसन्स लॉ?
हाँ, ये नियम कहता है काम पूरा होने के लिए उपलब्ध समय तक फैल जाता है।
अच्छा,
मतलब अगर किसी काम के लिए एक हफ्ता दिया है तो वो एक हफ्ते में ही पूरा होगा, चाहे वो दो दिन में हो सकता हो। हम सब ने इसका अनुभव किया है ना?
ओ हाँ, कॉलेज के असाइनमेंट से लेकर ऑफिस की डेडलाइन तक। बिल्कुल सही।
तो इसका तोड़ क्या है फिर?
तोड़ ये है कि आप कृत्रिम समय सीमाएं बनाएं, आर्टिफिशियल डेडलाइंस।
अपने लिए?
हाँ, अपने लिए जानबूझकर कम समय तय करें। जैसे आप तय करें कि ईमेल चेक करने के लिए मेरे पास 2 घंटे नहीं, सिर्फ 30 मिनट हैं। जब समय कम होता है तो दिमाग अपने आप फालतू चीजें हटाकर सिर्फ जरूरी काम पर फोकस करता है।
अच्छा,
तो सीमाएं बांधने से फोकस बढ़ता है।
हाँ, फोकस और रचनात्मकता दोनों बढ़ते हैं।
ये दिलचस्प है। मतलब कम समय देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा उल्टा लगता है पर हाँ, शायद काम करता है। और क्या तरीके हैं जिनसे हम कम मेहनत में ज्यादा असर पैदा कर सकते हैं?
एक और बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, वो है लिवरेज का। लिवरेज?
लिवरेज, उत्तोलन।
हाँ, उत्तोलन। इसका मतलब है छोटे से इनपुट से अनुपातीन रूप से बड़ा आउटपुट पाना। जैसे एक लीवर होता है ना, कम ताकत से भारी वजन उठा लेता है।
हाँ,
वैसे ही हमें अपनी ऊर्जा और समय को ऐसे कामों में लगाना चाहिए जहां लिवरेज ज्यादा मिले।
लिवरेज, इसके कुछ उदाहरण देंगे? मतलब कैसे समझें इसे?
देखिए, कई तरह के लिवरेज हो सकते हैं। जैसे एक है बौद्धिक लिवरेज। आपने कोई हुनर सीख लिया, मान लीजिए कोडिंग सीख ली या पब्लिक स्पीकिंग सीख ली,
ठीक है,
अब आप उसे बार बार इस्तेमाल करके बड़े नतीजे पा सकते हैं। एक बार सीखा, फायदा बार बार। या फिर है सिस्टम लिवरेज। आप ऐसी प्रक्रियाएं बना दें, आदतें बना लें या ऑटोमेशन सेटअप कर दें जो आपके लिए काम करें।
जैसे?
जैसे सोचिए, आपने ईमेल के कुछ टेम्पलेट बना लिए या अपने बिल पेमेंट्स ऑटोमेट कर दिए।
हाँ, ये तो करते हैं कई लोग।
हाँ, ये एक बार की मेहनत है पर आपका समय लगातार बचता रहता है।
सही बात है।
यहाँ एक और बहुत दमदार विचार है, आपकी ऊर्जा सीमित है लेकिन लिवरेज की आपकी क्षमता अनंत है।
वाह।
तो मतलब सिर्फ काम पर काम ना करें, ऐसे सिस्टम बनाने पर काम करें जो भविष्य के काम को कम करें।
हाँ, ये सिस्टम बनाने वाली बात मुझे बहुत बहुत जरूरी लगती है। हम अक्सर रोजमर्रा के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि सिस्टम बनाने का सोचते ही नहीं।
बिल्कुल।
और इसी से जुड़ा शायद वो एक और फ्रेमवर्क है, हटाना, स्वचालित करना, सौंपना। एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट।
हाँ बिल्कुल, एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट, ये किसी भी काम से निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब स्टेप बाय स्टेप तरीका है।
कैसे काम करता है ये?
देखिए, पहला कदम हटाना, एलिमिनेट। सबसे पहले पूछो क्या ये काम करना वाकई जरूरी है, क्या इसे पूरी तरह छोड़ा जा सकता है। वो ना कहने की कला यही काम आती है। दूसरा कदम स्वचालित करना, ऑटोमेट। अगर हटा नहीं सकते तो क्या इसे तकनीक से ऑटोमेट किया जा सकता है, जैसे बिल पेमेंट है या सोशल मीडिया की कुछ पोस्टिंग है। कई चीजें आजकल ऑटोमेट हो सकती हैं।
हाँ, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं।
बिल्कुल। और तीसरा कदम सौंपना, डेलीगेट। अगर ऑटोमेट भी नहीं हो सकता तो क्या कोई और इसे कर सकता है? जरूरी नहीं कि हर काम हम खुद ही करें। दूसरों को काम सौंपना प्रभावी ढंग से, ये भी एक बहुत जरूरी स्किल है।
ये तीनों कदम तो वाकई किसी भी काम को मतलब बहुत आसान बना सकते हैं। अगर हम हर काम को पहले इन 3 कसौटियों पर परखें तो शायद हमारा बहुत सारा वक्त और ऊर्जा बच जाए।
हाँ, काफी हद तक।
लेकिन एक और पहलू है जिस पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते, वो है आराम। क्या इस आलस की कला में आराम की भी कोई भूमिका है?
हाँ, और ये शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है इस पूरी फिलॉसफी का।
अच्छा।
ये कहता है कि आराम, फुर्सत, यहाँ तक कि बोरियत, ये सब भी उत्पादकता के लिए जरूरी हैं।
बोरियत भी?
हाँ, देखिए, जब हम जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे होते, मान लीजिए टहल रहे हैं या बस यूं ही बैठे हैं, तब हमारा दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है। उसे डिफ्यूज्ड मोड या डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। इसी मोड में वो पृष्ठभूमि में, मतलब बैकग्राउंड में, जटिल समस्याओं को सुलझाता है और नए आइडियाज पैदा करता है।
अरे वाह, मतलब वो जो कहते हैं ना शावर थॉट्स, या टहलते हुए अचानक सी प्रॉब्लम का हल मिल जाना, वो असल में दिमाग के काम करने का एक तरीका है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्याप्त नींद लेना, नियमित ब्रेक लेना, जैसे वो पोमोडोरो तकनीक है ना, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक।
हाँ हाँ।
और काम से बिल्कुल अलग कोई शौक रखना,
ये सब चीजें आपकी टॉप परफॉर्मेंस के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ काम से बचना नहीं है,
ये काम की गुणवत्ता में निवेश है।
बिल्कुल, ये काम की क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ एक और विचार है जो इसी बात को कहता है, आराम उत्पादकता का अभाव नहीं है, यह एक अलग प्रकार की उत्पादकता है।
ये तो वाकई मतलब सोचने का नजरिया ही बदल देता
है ना?
हाँ,
खासकर हमारे यहाँ भारत में, जहाँ मतलब परीक्षा के समय बच्चों पर या ऑफिस में कर्मचारियों पर एक लगातार दबाव रहता है कि बस करते रहो करते रहो।
हाँ, हमेशा ऑन रहो।
हाँ, वो हमेशा उपलब्ध रहने की उम्मीद।
बिल्कुल।
तो ये विचार कि रुकना, आराम करना, ये भी काम का ही हिस्सा है, ये बहुत जरूरी है।
हाँ, ये एक कल्चरल बदलाव लाने की जरूरत है मुझे लगता है। एक और नजरिया जो ये विचारधारा देती है वो भी काफी दिलचस्प है। आलसी लोग काम करने का सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं, जो अक्सर सबसे अच्छा तरीका होता है।
हाँ, ये बढ़िया है।
हाँ,
इसका मतलब ये नहीं कि कामचोर बने।
हाँ,
मतलब ये है कि स्मार्ट बने।
हाँ, मुश्किल के बजाय आसान रास्ता खोजे।
हाँ, जटिलता के बजाय सरलता खोजे।
और शायद ये भी कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, एक और विचार था ना ऐसा।
हाँ, आलस की कला ये जानना है कि कौन सी लड़ाई नहीं लड़नी है, अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। तो ये सारे सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब सवाल यह है कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। कुछ प्रैक्टिकल तरीके बता सकते हैं?
हाँ जरूर। जैसे अपने पेशेवर जीवन में आप 80-20 नियम का इस्तेमाल अपनी टू टू लिस्ट को प्राथमिकता देने के लिए कर सकते हैं।
कैसे?
बस खुद से पूछें, आज के दिन में वो कौन से 2-3 काम हैं जो सबसे ज्यादा असर डालेंगे, और उन पर पहले फोकस करें।
ठीक है।
गैर जरूरी मीटिंग्स को ना कहने की हिम्मत करें, या कम से कम उनका समय आधा करने का सुझाव दें। पार्किंसंस लॉ याद है?
हाँ हाँ बिल्कुल।
अपने ईमेल चेक करने का समय सीमित करें, दिन में बस 2 या 3 बार 30-30 मिनट के लिए, और सिस्टम बनाने के लिए थोड़ा समय निकालें, जैसे कॉमन सवालों के लिए ईमेल टेम्पलेट बना लेना।
ये तो हुए ऑफिस के काम, और निजी जिंदगी में?
निजी जिंदगी में भी ये उतने ही काम के हैं। पहचाने कि कौन सी चीजें या कौन से लोग आपको 80% खुशी देते हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान दें।
अच्छा।
घर के कामों के लिए पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करें, जैसे मैं अगले 45 मिनट में ये कमरा साफ करूंगी, देखिए कैसे फटाफट होता है।
हाँ हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी।
बिल पेमेंट जैसे कामों को ऑटोमेट कर दें, और सबसे जरूरी, अपने शेड्यूल में जानबूझकर कुछ ना करने का समय रखें, चाहे 15 मिनट ही सही, बस आराम करने, सोचने या बोर होने के लिए।
बोर होने के लिए भी समय निकालना है?
हाँ, क्योंकि वहीं से नए आइडियाज आते हैं।
सही बात है। और निर्णय लेने में भी ये मदद कर सकते हैं ना?
हाँ, जैसे वो हेल हाँ या नहीं वाला नियम सुना है मैंने।
हाँ हाँ, डेरेक सिवर्स का।
हाँ,
मतलब अगर किसी चीज के लिए मन में जबरदस्त उत्साह नहीं है तो शायद ना कहना ही बेहतर है।
बिल्कुल। इससे हम अपनी ऊर्जा उन चीजों के लिए बताते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं, और छोटे मोटे फैसलों पर ज्यादा सोचने में वक्त बर्बाद ना करें। रिवर्सिबल डिसीजन पर कम ऊर्जा खर्च करें।
हाँ, जैसे किसी पार्टी में जाना है या नहीं, इस पर घंटों सोचने के बजाय अगर मन नहीं है तो शालीनता से मना कर दें और आगे बढ़ें।
बिल्कुल, अपनी मानसिक ऊर्जा बचाएं, वो ज्यादा कीमती है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि व्यस्त दिखना सफलता का पैमाना नहीं है, असली चीज है प्रभावशीलता, सही काम करना। और ये जानकर एक तरह का सुकून मिलता है कि आराम करना, रुकना, सोचना, ये भी जरूरी और उत्पादक है। ये एक तरह की आज़ादी देता है उस लगातार भागदौड़ से।
सही कहा। और मेरे लिए वो 80-20 नियम की सादगी, लेकिन उसकी ताकत और लिवरेज का कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। ये सोचना कि कैसे छोटे केंद्रित प्रयासों से या एक बार के स्मार्ट काम से हम लंबे समय तक बड़े नतीजे पा सकते हैं, ये वाकई गेम चेंजर है। ये मेहनत के बजाय बुद्धिमत्ता पर जोर देता है, सिस्टम बनाने पर जोर देता है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं इस चर्चा के बाद। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप अपने जीवन से हटाने, ऑटोमैटिक करने, या शायद जानबूझकर उसके लिए कम समय निर्धारित करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखती है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकटे फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।